أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سلام
اللهم صل على محمد وآل محمد
أجل فرجهم. تمام حمد و ثناء اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی سوگواری میں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ،
ان کے غم میں، ان کی پرساداری میں اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بھی توفیق دی کہ میں پاکستان سے باہر نکل کے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر مختلف اقوام زندگی گزار رہی ہیں، بہت ساری رنگ اور نسل کے لوگ یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے. 18% غالباً یہاں پر مسلمان ہیں، جن میں شیعہ اور بھی کم ہیں. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ذکر اہل بیت نہ ہوتا ہو، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی سوگواری نہ ہوتی ہو، یہ عزاداری نہ ہو. کچھ احساسات اس جگہ کے حوالے سے جو میرے اپنے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جذبات اور وہ دعائیں جو آئندہ کے لیے، سنگاپور کے مستقبل کے لیے عزاداری کے حوالے سے، اس کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اس لیے کہ بہرحال ये जगह वो जगह है जो आप लोगों से ताल्लुक़ रखती है, जो ख़वातीन यहाँ बैठी हुई हैं या हो सकता है कुछ लोग अपने घरों में बैठे हों, और अगर कोई यहाँ मौजूद नहीं है तो उस तक भी मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाइएगा, इस मैसेज को आपने आगे बढ़ाना है। जब यहाँ हम एंटर हुए तो मुझे थोड़ा सा इस जहत से शायद आपको महसूस ना हो क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं, हम बहुत सारी नेमतें आज़ादारी के हवाले से छोड़कर आपके पास पहुँचे हैं कि इमाम बारगाह है, अज़ा खानी है, और वो जगह है जहाँ पर हमें यकीन है कि यहाँ कुछ और नहीं होता, सिर्फ़ अहले बैत का ज़िक्र होता है, सिर्फ पाकीज़ा ज़िक्र होता है। जब यहाँ दाखिल हुए रेस्टोरेंट में तो दिल में एहसास हुआ कि ये हॉल पता नहीं इसमें इन अय्याम के अलावा क्या होता। जगह आपने ली है 10 दिन के लिए ली है, लेकिन इसमें दरो दीवार में, इसकी ज़मीन में वो पाकिजगी नहीं है। हत्ता घर के लिए कहा जाता है, अगर कोई इंसान घर ले तो ऐसे घर को तलाश करें जहाँ पर गुनाह ना होते हों, वो जगह तलाश करें, वो ज़मीन तलाश करें जिसमें कोई गस्पी चीज़ ना हो, कोई बेमारफती की चीज़ ना हो। अगर इंसान किसी जगह पर रह रहा है, नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, और वो ज़मीन वो पाक ज़मीन है जिसमें हमें यकीन है कि पहले कुछ नहीं हुआ, तो हमारी मार्फत में, हमारी पाकिजगी में इजाफा होगा। इसलिए हो सकता है ये अभी 10 दिन के बाद यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम क्या क्या होता होगा, क्या हो सकता है। तो एक चीज़ जो आप लोगों के लिए एक जिम्मेदारी के तौर पर है, रफाकत कल भी मैं यही बात कर रही थी कि क्या मुस्तकबिल में यहाँ इमाम बारगाह का, मस्जिद का कोई इम्कान है। तो ये तरीका बहुत सारी जगहों पर है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें पाकिस्तान की मस्जिदों की, अज़ा खानों की, अज़ादारी की वो कैफियत और वो जो वहाँ बरकतें और रहमतें हैं, मानवियत है, उसका एहसास उस वक्त होता है जब इंसान कोई नेमत गुम करता है। तो जब उसके हाथ में नेमत नहीं होती तो नेमत जाने के बाद उसको नेमत की कदर आती है। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दें कि आप लोग इस मिशन को अपनी ज़िंदगी का हदफ बनाएं, अपनी ज़िंदगी का आपने ये ऑब्जेक्टिव बनाना है आपकी लाइफ का जो शिया है यहाँ पर, कि एक ऐसी जगह हो, ज़मीन ऐसी हो जहाँ पर कोई और एक्टिविटी ना होती हो, आपको यकीन हो कि यहाँ पर सिर्फ ज़िक्र अहले बैत होता है, यहाँ पर सिर्फ मजलिसे आइमा अलैहिस्सलाम होगी, यहाँ पर सिर्फ अहले बैत की पसंद के काम होते हैं और उसके अलावा कुछ और नहीं होता। अल्लाह ताला इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह ताला आप सबके तौफीकात में भी इजाफा करें और हमारी दुआओं को भी इस्तजाबत के दर्जे तक पहुँचाए। आज पहली मजलिस से एक मरतबा दूध भेजेगा, ये पहली मजलिस है और इसमें सिर्फ मैं मौजू को अनाउंस करूँगी, आपके सामने बयान करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर कल से बात होगी और वो मौजू भी आपकी इस इलाके की ज़रूरत को देखते हुए, जगह की ज़रूरत को देखते हुए रखा गया है, इस्लाम और कल्चर का उनवान टॉपिक इंशाल्लाह कल से शुरू होगा। और आज चाहूँगी मैं थोड़ा सा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करूँ, आज़ादारी की अहमियत के हवाले से बात करूँ, और ख़ुसूसन माह मुहर्रम जो शुरू हुआ है, ये इस्लामी महीना है, आज साल का पहला दिन है, पहला महीना और पहला दिन। साल हमारा शियों का साल, मुसलमानों का साल हिजरी है, हिजरी कमरी हिजरी जिसे कहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने देख लिया है कि 1435वां साल यानी 1435 शुरू हो चुका है, और 61 हिजरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी। उस वक्त से लेकर आज तक हम लोग गिरिया कर रहे हैं, यानी तकरीबन 1350 साल से ज़्यादा हो गए जब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी बनाई जा रही। अच्छा, आज़ादारी से पहले भी मुहर्रम की अहमियत थी या नहीं थी, या माह मुहर्रम सिर्फ मजलिसों की वजह से अहम है, ये एक सवाल। ये मुहर्रम का महीना गम का महीना है या इसकी और भी इस्लाम में कोई हैसियत है? इस्लाम में मुहर्रम को साल का आगाज करार दिया गया, ये भी कल्चर का फर्क है कि हमने अपने कल्चर की कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, मुसलमानों ने अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, जिनमें से हिजरी कमरी साल को तकरीबन दूसरे ममालिक में, मतलब बरसग़ीर के अलावा पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा तो बिल्कुल ही छोड़ दिया गया, और लोगों को बागपात महीनों का भी पता नहीं होता कि इस्लामी महीना कौन सा चल रहा है, कौन सी तारीख है, कौन सी तारीखों में क्या अहम बात है, और सिर्फ जो है वो क्रिश्चियन कैलेंडर और ये ईसाई ईसवी साल जो है वो चल रहा होता है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में। ये हमारा एक बहरान है, कमी है, हमारी बेतौफीकी है कि हमने इस साल को भुला दिया। आज के दिन के हवाले से और जो शब गुजर गई, बहुत ज़्यादा अहमियत बताई गई है, रात जो गुजरी है वो इबादत की रात थी, शब अव्वल माह मुहर्रम इबादत की रात और दिन भी इबादत का है। जिन लोगों ने आमाल देखे हैं वो जानते हैं कि 9 दिन के रोज़ों की बहुत फजीलत है, खुसूसन पहली मुहर्रम के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है। जो लोग अपने वतन में हैं उन्हें रोज़ा रखना चाहिए अगर उनके लिए आज़ादारी में मुश्किल ना पैदा हो। और इसी तरह से आज एक नमाज और दुआ है जिसमें कुछ चीज़ें रसूल अल्लाह ने अल्लाह ताला से तलब की हैं, ताकि मैं इस दुआ के चंद जुमलों के ज़रिए से आप तक रसूल अल्लाह का पैगाम पहुंचा दूँ, नबी अकरम का मैसेज आप तक पहुंचा दूँ कि रसूल अल्लाह आज अल्लाह से क्या तलब करें। आज के दिन एक मुसलमान को, एक शिया को खुदा से क्या मांगना चाहिए, और ये जो दुआ है इसकी अहमियत ये कि पूरा साल हमें उन चीज़ों की तरफ, उन नुकात की तरफ, उन पॉइंट्स की तरफ सोचना चाहिए और काम करना चाहिए जिसके ऊपर रसूल अल्लाह ने इतनी तवज्जो दिलवाई। हमारी और आपकी तवज्जो इन दुआओं की तरफ होनी चाहिए। 3 नुकात बयान करूँगी। पहला नुक्ता जिसे रसूल अल्लाह तलब करें अल्लाह ताला से, और मैं पहली मजलिस में इस दुआ का ज़रूर हवाला देती हूँ, मेरी आदत है कि जब भी मुहर्रम की पहली मजलिस होती है पहली तारीख को इस दुआ के ये 3 नुकात ज़रूर बयान करती, बहुत अहम इंतहा इम्पॉर्टेंट हैं ये नुकात जो हमारी साल भर की ज़िंदगी के ऊपर मुनहसर हैं। क्योंकि नबी अकरम कहते हैं परवरदिगार ये नया साल है, नया साल कितनी अहमियत रखता है। न्यू ईयर पे तो पहली जनवरी आएगी तो फिर देखिएगा क्या होता है, पूरी दुनिया में अहमियत रखता है नया साल, क्योंकि नई उमंगें होती हैं, नई ख्वाहिशात होती हैं, नए इरादे होते हैं, इंसान नई नई चीज़ें सोच रहा होता है, अगले साल के लिए प्लानिंग कर रहा होता है। हमें क्या प्लान करना है? नबी अकरम पहली चीज़ अल्लाह ताला से तलब करें, परवरदिगार मुझे शैतान के शर से महफूज रख, क्योंकि सबसे बड़ा शैतान दुश्मन है, इंसान का दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, और उसके शर से महफूज रखने की पहले दिन ही दुआ करनी चाहिए। शैतान आता है वसवसे की सूरत में, सिर्फ बुराइयों की जगह पर नहीं आता, जहाँ पर शराब हो, जहाँ पर बेहयाई हो, उरियानी हो, फिल्में हो, गाने हो, तो वहीं शैतान होगा, बल्कि अच्छी जगहों पर भी शैतान आता है। मजलिस में इसलिए भी बयान कर रही हूँ क्योंकि आज़ादारी हम अहले बैत के नाम पर करते हैं, इबादत के नाम पर करते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, रसूल अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, जनाब सैयदा को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि इंसान इबादत में तहरे, जब नमाज में बहकाता है, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहका रहा है, जो लोग हज करके आए हैं वो कंकरियाँ मार कर आए हैं, क्यों? ये एक सिम्बोलिक काम है आपका, एक एक्शन है जिससे आप ऐलान करके आते हैं कि हम यहाँ से जाने के बाद भी शैतान से लड़ते रहेंगे। तो वो लड़ना तो मुसलसल जारी है, लेकिन दुआ भी है, दुआ के साथ अमल भी है, दुआ हमें अमल की तरफ लेकर आती, दुआ हमें समझाती है हमें साल भर क्या करना है। तो शैतान से बचने के लिए अल्लाह ताला से रसूल अल्लाह पहले दिन दुआ करें कि शैतान के शर से महफूज रखे। इन मजालिस में भी शैतान आ सकता है, खुलूस ना होना शैतान के आने की अलामत है। ये मजलिसें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बर्पा की, मुझे यकीन है बहुत खुलूस के साथ और सच्ची नीयत के साथ बर्पा की हैं। जो लोग आए हैं वो खुलूस के साथ आए होंगे, लेकिन ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में यहाँ के अलावा मैं बहुत सी जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा शियों की तादाद होती है, मजलिसों की तादाद ज़्यादा होती है, कौन सी मजलिस में जाएँ, कहाँ पर जाएँ, किसके घर जाएँ, किस इमाम बारगाह में जाएँ, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा और दूसरे मकासद भी इंसान की नज़र में होते हैं। लोग अपनी कम्युनिटी में जाते हैं, वो फला वाला हमारी तरफ का है, वो हमारी कौमियत का है, वो हमारा रिश्तेदार है, उसके घर भी हमने जाना है तो वो हमारे घर आएगा। इस तरह की बातें जो खुलूस नियत में प्योरिटी नहीं रखती हैं, इस बहुत सारी हमें नज़र आती हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम मजलिस में जाएँ सिर्फ इमाम हुसैन की खातिर जाएँ और इमाम ही के लिए जाएँ, किसी के प्रेशर में ना जाएँ, किसी के कहने से ना जाएँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुश करने जाएं, जनाब सैयदा को खुश करने के लिए जाएं, तो ये शैतान से दूरी है। ये एक अमल शैतान से दूरी। फिर मजलिस में एक पॉइंट आपको दिया मैंने, और बहुत सारी जगहों पे, बहुत से मकामात पर शैतान आते, यहाँ आए तो कोशिश करें कि आप कोई भी गुनाह करते हुए ना आए, इस हाल में आए, उस हुलिये में आए, जनाब सैयदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमसे राजी हैं। दूसरा नुक्ता जिसे रसूल अल्लाह ने अल्लाह ताला से तलब किया, परवरदिगार मुझे अपने नफ्स से महफूज रख, नफ्स से अम्मारा, नफ्स हमारे अंदर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, और हाँ रसूल अल्लाह की हदीस है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो मुसलसल तुम्हें बुराई की तरफ उकसाता रहता है। ख्वाहिश है इंसान की कि वो गुनाह करे, ख्वाहिशातें नफसानी गुनाहों की तरफ इंसान को मरहूब करती हैं, बुराई की तरफ इंसान को लेकर आती हैं। इससे बचना, इससे मुसलसल लड़ना, ये जहाद अकबर है। और शुजात, बहादुरी, इंसान की दिलेरी, इंसान का ब्रेव होना, इसकी अलामत हज़रत अली अलैहिस्सलाम दुरूद भेजेगा मौला ताला पर, मौला ने फरमाया कि अशजाउन्नास मन गलब अल हवा, सबसे ज्यादा बहादुर इंसान वो है जिसने अपनी ख्वाहिश को जेर कर दिया, जिसने अपनी ख्वाहिश से लड़ाई कर ली, उसको हरा दिया, वो सबसे ज्यादा बहादुर। एक मिसाल दूंगी, शायद हो सकता है आज पहले दिन के लिहाज से आप लोगों की बहुत हैवी डोज हो जाए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है। परवरदिगार आलम हम सबको अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने की तौफीक दे, ये दुआ है रसूल अल्लाह की आज से। और शहीद मुतहरी की किताबों का जाहिर सी बात है जो लोग मुताला करते हैं उन्होंने बहुत देखा होगा कि उसमें उन्होंने जो इनकलाब से पहले अपनी तकारीर की हैं, उस दौर में तकारीर की है कि उसका हाल बाहर का शायद आज के सिंगापुर जैसा ही हो। तेहरान को पेरिस कहा जाता था, आज भी वैसे अगर जाएं तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन ज़रा तसव्वुर करें कि उस वक्त क्या हाल होगा। तो इस दौर में हो सकता है, क्योंकि मैं कल से जो माहौल देख रही हूँ कि कपड़े कितने पहने जाते हैं, उसके हवाले से शायद कोई खातून ये समझे कि अगर मैंने कमीज सलवार पहन ली है और मेरे पास दुपट्टा है तो मैंने बहुत ज़्यादा पर्दा कर लिया है उसके मुकाबले में यहाँ के हालात। लेकिन इस्लामी कल्चर के हवाले से और दीन में जो औरत की सत्र के हवाले से जो कोशिश बताई गई, उसमें आपकी ख्वाहिश के ऊपर ये कंट्रोल है कि पर्दा हो, कम से कम मजलिस में आते वक्त इंसान कोई गुनाह ना करे। ये कम से कम मैं ऐसे ही कह रही हूँ, वरना जाहिर सी बात है कि पर्दा करना ज़रूरी है। ये ख्वाहिश में आपने जो कंट्रोल कर लिया और अपने सर को कवर किया है, यह आपकी बहादुरी है। जीत गया वो शख्स जिसने अपने इस ख्वाहिश के साथ लड़ाई की है। आपने थोड़ी बहुत लड़ाई की है, क्योंकि इस माहौल में जिसने इतने कपड़े पहने हैं उसने लड़ाई की है, बाकी सबको देखते हुए उसने अपने नफ्स के साथ जंग की थी। थोड़ी सी और बहादुरी दिखाए, थोड़ी सी नफ्स के साथ और लड़ाई करें कि जब हमने 70% कर लिया है तो हम 30% हिजाब में कमी करके दीन को क्यों पीछे छोड़ दें, हम क्यों ना ऐसे बन जाएं कि हमारे मौला हमसे राजी हो जाए। थोड़ा सा तो आपने इस कल्चर के हिसाब से अपने आप को तब्दील किया। अब इसके पीछे भी कुछ मसलहतें होती है। देखिए, नफ्स इंसान का ना उसे बहुत धोखा देता है। इंसान चाहता है कि लोगों को मुतमईन करे, अल्लाह को मुतमईन नहीं करना चाहता। इस उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे साथ दीनदारी के हवाले से चल रहे होते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो हमें बुरा समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर नियत में फुतूर आ गया। अब ये जो इतना किया था ना, ये जो 70% आपने कर लिया था इस कल्चर की मुखालफत में, वो अल्लाह के लिए नहीं था, नाउज़ु बिल्लाह, वो इसलिए था कि ये जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं ये हमें क्यों कहे, क्या कहेंगे, ये कैसे देखेंगे। अब अपनी अपनी नियतों को इंसान चेक करे कि हमने जो ये किया है, ये इतने फीसद जो हम अपने साथ लड़ रहे थे वो अल्लाह के लिए लड़ रहे थे या नाउज़ु बिल्लाह बंदों की खातिर लड़ रहे थे, बंदों के मुंह के लिए लड़ रहे थे। आपने लड़ाई की अपने नफ्स के साथ, जो ओढ़ा उसके ऊपर अगर थोड़ा सा और आप कर ले तो ये शुजात है। अल्लाह ताला हम सबको मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ऐसे आने की तौफीक दे कि जनाब सैयदा हमसे खुश हो जाए। और तीसरी चीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजेगा मोहम्मद मोहम्मद वजल फरज। नबी अकरम ने फरमाया परवरदिगार मुझे उन चीज़ों पर, उन कामों में मशगूल कर दे, मेरी एक्टिविटीज़ वो हो, मेरी ज़िंदगी के मामलात वो हो कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। बहुत ही अहम है इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करना, और ख़ुदा को राज़ी करने के लिए अपने नफ्स को भी नाराज़ करना होता है, शैतान को भी नाराज़ करना होता है, अपने रिश्तेदारों को भी नाराज़ करना होता है, बाद बहुत सारी क़ुरबानियाँ देनी पड़ती हैं अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। कितना अहम है ये नुक्ता खुदा को राज़ी करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से चल रहे थे, मौला के जो कलमात हैं, इमाम के जो जुमले हैं, रसूल अल्लाह के रोज़े पर, कब्र नबी पर, इमाम आली मकाम जानते हैं मैं कुर्बानी देने जा रहा हूँ, इमाम आली मकाम हर एक को बता चुके हैं कि मेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे, सबसे कह चुके हैं कि मेरी बहनें असीर होंगी। यकीन था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी शहादत का, वादा तिफली बचपन का वादा क्या था, बचपन का वादा वो वादा था जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह से कर चुके थे, बता चुके थे कि मैं कुर्बान होऊंगा, तैयारी आमादगी ऐलान कर चुके थे, जानते थे कि कुर्बानी देने जा रहे, फिर भी अल्लाह ताला से दुआ करें। जरा तसव्वुर करें, वो मासूम इमाम है, गुनाह नहीं करते, लेकिन फिर भी इमाम की आंखों में अश्क है और दुआ करें कि परवरदिगार मुझे ऐसी तौफीक अता फरमा, उन कामों में मसरूफ रख के मैं तुझे और तेरे रसूल को राजी करूं। ये मौला की शार है, उनकी जिंदगी का अहम तरीन अल्लाह ताला से मुद्दा है कि परवरदिगार मुझे ऐसा बना दे कि मैं तुझे राजी कर सकूं। और आखिर वक्त में भी जब शहादत हो रही थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, बिल्कुल उस वक्त जब जख्मों से चूर चूर हैं, इमाम ज़मीन पर गिरे हुए हैं, सैकड़ों जख्म, और उसके बाद इमाम कसर तन से जुदा होने वाला है, उस वक्त में इमाम फरमाते हैं परवरदिगार अगर मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मेरा बदन राख हो जाए, जला दिया जाए, मेरे बच्चे यतीम हो जाए, तब भी तेरे गैर से मोहब्बत नहीं करूँगा। हम उस हस्ती के जिक्र में यहाँ पर जमा हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र में करबला की तारीख में कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं जिसे समझना हर शिया का फ़र्ज़ है, जिसमें से एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम का मकसद, शहादत का मकसद, क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना को छोड़ा, आज का दिन मदीना को छोड़ने का दिन, आज की तारीख नहीं है, 28 रजब की तारीख थी, लेकिन आज जिस मुसीबत का जिक्र होता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना से रवानगी का जिक्र। क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत को कबूल किया, ये वो सवालात हैं जिसका जवाब हम सबको आना चाहिए, हर शिया को पता होना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का क्या मकसद था, उनके क़याम का क्या मकसद था, क्यों इमाम अली मकाम ने ये काम अंजाम दिया। बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए, शिया को इस सवाल का जवाब देना आना चाहिए, और अफसोस से कहना पड़ता है कि इस सवाल का जवाब बहुत से शिया, उम्र रसीदा शिया भी सही नहीं जानते, आप ये सवाल करना शुरू करें लोगों से, देखें कितने शिया इसका जवाब देने की काबिलियत रखते हैं, कितने शियों में इतनी एबिलिटी है कि वो जान सकें कि तारीख में क्या हुआ था और क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा था। कुछ लोग इसलिए कहते हैं, जाकिरीन भी जिक्र कर रहे होते हैं तो इन नुकात को बयान करते हैं और लोग सुनते हैं और फिर उसी को जिक्र कर रहे होते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन का वादा था, बचपन का वादा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, लेकिन क्या इसीलिए इमाम ने ये कुर्बानी दी थी? यही एक सही रीज़न था, यही वजह थी, असली वजह यही थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद ने बैअत तलब की थी। इस नुक्ते को बहुत ही ज़्यादा सॉलिड, बहुत ज़्यादा अहम नुक्ता समझा जाता है। इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग मुत्तफिक होंगे, समझेंगे कि हाँ यही, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद ने कहा था कि या तो बैअत कर लें वरना आपका सर उड़ा दिया जाएगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत तलब नहीं करता, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नहीं कहता कि मेरी बैअत करें, मेरे सामने झुक जाए, मुझे खलीफा माने, तो क्या इमाम हुसैन मदीना नहीं छोड़ते? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद से जंग नहीं लड़ते? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये क़याम नहीं करते? करबला नहीं होती? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोशी से बैठ जाते, मदीना में रुक जाते, अपना वतन नहीं छोड़ते? थोड़ा सा अपने जहन के ऊपर इस वक्त आप लोग, मैं सवाल उठा रही हूँ, सोचे कि क्या अगर ऐसा होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं उठते? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी इस क़याम की, इस जंग लड़ने की, यजीद से मुकाबला करने की वजह खुद बताई है, और उसमें इमाम आली मकाम ने असली वजह को, असली रीज़न को बयान किया कि इमाम आली मकाम ने क्यों क़याम किया। अगर यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत तलब नहीं करता तो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे जंग लड़ते, तो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क़याम करते और मदीना को छोड़ते। अगर बैअत तलब नहीं करता तब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने काम करना था। इसी तरीके से मैं भी इसको और ज़्यादा वाज़े करूँगी और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी इस नुक्ते को। एक और चीज़ कही जाती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे वालों ने ख़त लिखकर बुलाया था, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा था और क़याम किया था। कूफे वालों के ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास किस तारीख को पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे, कब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे वालों के ख़त मिले, अगर किसी को ये बात सही मालूम हो तो वो ये नुक्ता कभी भी बयान नहीं करे, क्योंकि इमाम अली मकाम जब मदीना छोड़ चुके थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के में थे, 3 शाबान को 61 हिजरी की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से रवाना हुए और 3 शाबान को इमाम पहुँचे, 28 रजब को रवाना हुए थे, 3 शाबान को मक्का में पहुँचे थे। और जब इमाम ने मदीना छोड़ दिया था तब लोगों को कूफे में मालूम हुआ था कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत तलब की है और इमाम अली मकाम ने मदीना छोड़ दिया। उस वक्त लोगों ने ख़त लिखना शुरू किए थे, उस वक्त लोगों ने इमाम हुसैन को ख़त भेजना शुरू किए थे, और मक्का में इमाम अली मकाम के पास पहला ख़त आया था कूफे वालों का। मक्का में इमाम अली मकाम के पास ख़त आना शुरू हुए थे, जिनकी तादाद 18,000 और 25,000 भी बयान की जाती। उसके बाद इमाम ने मक्का से अपने सफ़ीर हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को और ज़ुहैर बिन क़ैन को कूफा भेजा था। ये बाद की बात है, मदीना तो इमाम पहले छोड़ चुके हैं, यजीद से लड़ने के लिए इमाम पहले ही ऐलान कर चुके। तो अब इसका मतलब है कि ये तीनों नुकात, यानी वादा तिफली का होना और यजीद का बैत तलब करना और तीसरी चीज़ कूफे वालों का ख़त, ये तीनों पॉइंट्स इतने सॉलिड नहीं, हकीकी नुकात नहीं, असली चीज़ नहीं है। असली चीज़ वो है जो इमाम अली मकाम ने अपने बयान में खुद बयान की है, खुद फरमाया। इमाम हुसैन ने कहा इन्नी उरीदो अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मेरा इरादा ये है कि मैं अमर बिल मारूफ करूँ और नहीं अस मुनकर करूँ। इमाम अली मकाम का असली मकसद यजीद से जंग लड़ने का अमर बिल मारूफ और नहीं अस मुनकर था। یزید نے بیعت طلب کی, اگر نہیں بھی طلب کرتا تو بھی امام نے کہا کہ اگر کوئی ایسا ظالم ہو جو دین کو ختم کر رہا ہو, دین کو مٹا رہا ہو, دین میں تحریف پیدا کر رہا ہو, دین کی بنیادیں بدل رہا ہو, حلال کو حرام کر رہا ہو, حرام کو حلال کر رہا ہو, دین کو ختم کرنے والا ہو, اور لوگ اس کو دیکھتے رہیں, خاموش رہیں, آواز نہ اٹھائیں, اس کے خلاف کوئی کام نہ کریں, تو وہ بھی ظالم کے ساتھ محشور ہوں گے, وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہو جائیں گے. امام علی مقام نے کہا کہ میں اس یزید ملعون کے خلاف آواز اٹھاؤں گا, قیام کروں گا. امام نے اس کو زبان سے بھی امر بالمعروف کیا. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ امر بالمعروف تو زبان سے ہوتا ہے, زبان سے کیا تھا لیکن اثر نہیں ہوا. جب زبان سے بات کرنے کا اثر نہ ہو تو امر بالمعروف کا اگلا مرحلہ قربانی کا ہوتا. ہم اس ہستی کے فرش پہ بیٹھے جس نے امر بالمعروف نہیں از منکر کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا. کہ امر بالمعروف نہیں از منکر زبان سے کرنا بھی آسان نہیں ہے, کیونکہ سنگاپور میں کسی عورت کو حجاب کے لیے بھی کہنا بہت آسان کام نہیں ہوگا, ایک چھوٹی سی بات کی. لیکن ایک ایسے شخص کو جو ظالم ہے, جابر ہے, مستکبر ہے, دین کی بنیادوں کو تبدیل کر رہا ہے, بات سنے گا نہیں, زبان کی بات کا کوئی اثر نہیں, اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا اور اپنی جان کو قربان کر کے احتجاج کرنا, یا میں اتھار علیہ السلام کی ذمہ داری ہوں. کہ جب دودھ بھیجے گا صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم, یہ امام کا کام ہے, یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے, وہ اپنی جان کو قربان کرے, اپنی اولاد کو قربان کرے. اور روایات میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے بہت ساری روایتیں کہ لوگوں نے بچپن سے سن رکھا تھا کہ حسین شہید ہو جائیں گے, اس لیے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ کو چھوڑیں. ہر شخص نے روکا, جناب محمد حنفیہ نے روکا جو امام حسین کے بھائی ہیں, حضرت علی کے بیٹے, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے روکا. جابر ابن عبداللہ انصاری مشہور نام ہے تاریخ اسلام کا, پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں, امیر المومنین کے صحابی ہیں, امام حسن کے صحابی, امام حسین کے صحابی, اور روک رہے ہیں, یہ کہہ کر روک رہے ہیں کہ مولا آپ جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے, آپ قربان ہو جائیں گے, آپ قتل ہو جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا, ان عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ امام جب مکے میں تھے, حضرت محمد حنفیہ اس وقت آ گئے, اس وقت بھی روکا کہ آپ جا رہے ہیں, آپ عورتوں کو نہ لے جائیں, عورتوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں. امام حسین نے فرمایا کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. امام کے لیے ایک ایک مصیبت بہت واضح تھی, مولا سب کچھ دیکھ رہے ہیں. بہت لمبی مجلس نہیں پڑھنی, اس لیے ایک آدھ روایت کا ذکر کروں گی ذکر مصائب میں. جب مدینہ سے چل رہے تھے, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام حسین علیہ السلام کو روکا اور یہ کہا کہ مولا آپ نہ جائیے اور آپ یزید کے ساتھ مصالحت کر لیں, یزید کے ساتھ صلح کر لیں, جیسے آپ کے بھائی حسن علیہ السلام نے صلح کی. امام حسین نے کہا اے جابر, اے صحابی رسول, میرے بھائی نے وہی کام کیا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی تھی, اور انہوں نے سیرت رسول اللہ کے اوپر عمل کیا تھا, میں بھی وہی کام کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہوگی اور جو میری ذمہ داری, اور میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتا ہوں, اسی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ آئم اتھار کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ لمحوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں شاید ہم کچھ بہتر جانتے ہیں, لیکن امام سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابی کو, صحابی رسول کو کچھ دکھانا چاہا. یہ کربلا کے واقعات کربلا سے پہلے کے بھی ہیں, بعد کے بھی ہیں, اور یہ حقائق ہیں. اگر کسی کی آنکھوں میں بصیرت ہو, کوئی دیکھ سکتا ہو, تو بہت کچھ دیکھ سکتا. امام علی مقام نے जब कुछ दिखाना चाहा तो जनाब जाबिर अपने अल्लाह अंसारी ने देखा कि आसमान से सवारियां ज़मीन पर नाजिल हो रही, रसूल अल्लाह भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, जनाब सैयदा भी हैं, मामे हसन भी हैं,
सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद अजल फरज।
नबी अकरम ने अपने पैर को ज़मीन पर मारा, जाबिर ने देखा कि ज़मीन के नीचे से पानी निकला, उसके बाद उस पानी के नीचे से एक और ज़मीन निकलती है, सात समंदर और सात ज़मीनों को फटते हुए जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने देखा, और उसके बाद उन्होंने देखा कि दहकती हुई आग है और उस आग में कुछ लोग जल रहे हैं। रसूल अल्लाह ने कहा कि जाबिर ये मुआविया है, ये अबू जहल है, ये यजीद है, ये हमारे दुश्मन है जिनका मकाम अल्लाह ताला ने ज़मीन में जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में रखा। और उसके बाद रसूल अल्लाह ने आसमान की तरफ इशारा किया, जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने देखा कि अहले बैत की पाकीज़ा हस्तियाँ पंजते पाक अलैहिस्सलाम ऊपर की तरफ और देखा कि वो जन्नत में बेहतरीन मकाम में। नबी अकरम ने कहा कि जाबिर क्या मैंने तुम्हें हुसैन के बारे में, हुसैन की शहादत के बारे में अपनी जिंदगी भी नहीं बता दिया, अब हुसैन के बारे में शक ना करो, उसे जाने लो। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा कि मौला आप जाइए, खुशी से रुखसत किया। हाँ, ये वो शहादत है जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत खुशी से कबूल किया, मजलूमियत के साथ, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसके लिए तैयार थे, एक लम्हे के लिए भी इमाम पीछे नहीं हटे। लेकिन मदीना को छोड़ना इमाम की बहुत बड़ी मुसीबत थी, मुश्किल थी, क्योंकि ख़वातीन ग्रामी किसी के लिए भी अपने घर को छोड़ना, वतन को छोड़ना, अपनी जगह को छोड़ना आसान नहीं होता। और अगर किसी मकसद के लिए छोड़ा हो, जानता हो कुछ अरसे बाद वापस आ जाएंगे तो फिर भी आसान होता, लेकिन हुसैन ने मजबूरन मदीना को छोड़ा। मदीना भी वो जगह, अल्लाह ताला आप सबको ज़ियारत नसीब करे, जिन लोगों ने ज़ियारत की वो जानते हैं कितना सुकून, रसूल अल्लाह की कब्र है, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र है, ये जो हाजी जाते हैं उनका दिल नहीं चाहता वहाँ से वापस आने को, कि वहाँ पर सुकून है, मानवियत है, वहाँ वो चीज़ है जो और कहीं नहीं मिलती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस जगह को तर्क करें जहाँ पर बचपन से ज़िंदगी गुजारी, इस मुसीबत में तर्क करें, आप फर्शज़ा पर हैं, मदीना से रुखसती से पहले बस एक रवायत इमाम आली मकाम के इस गिरिये की अहमियत के लिए बता दूँ कि मसाइब का वक्त है, अगर किसी की आँख से एक कतरा आंसू, और उसकी छोटाई के लिए मिसाल दी गई कि मक्खी के पर के बराबर, मक्खी का क्या वजूद और उसके पर की क्या हैसियत, कि अगर इतना भी बह जाए तो अल्लाह ताला उसे कबूल करता है, उसके गुनाहों की मग़फ़रत करता है। ये गिरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहमियत, क्योंकि हुसैन ने अपनी हर चीज़ को अल्लाह के लिए क़ुरबान कर, और परवरदिगार आलम हुसैन से मोहब्बत करने वाले की मंजिलत को बढ़ा देता है, इमाम अली मकाम के इश्क में रोने वालों की अहमियत को बुलंद कर देता है। गिरिया की मंजिल पर जनाब सैयदा अपने मुतवल्लिद शुदा बच्चे को रसूल अल्लाह के पास लेकर आई, ये वो हुसैन है जो नौमौलूद है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है माएँ खुश होती हैं, नाना दादा खुश होते हैं, नानी दादी खुशी को मनाती, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत ही बहुत अजीब कि जब पैदा हुए हैं उसी वक्त से गिरिया शुरू हो गया, रसूल अल्लाह को रोते हुए देखा तो जनाब सैयदा ने सवाल किया, बाबा आप रो रहे, आप क्यों गिरिया कर रहे? रसूल अल्लाह ने फरमाया, फातिमा ये बच्चा इराक़ की सरजमीन में भूखा प्यासा शहीद हो जाएगा। जब जनाब सैयदा ने सवाल किया, बाबा क्या उस वक्त आप मौजूद होंगे, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں فاطمہ میں نہیں ہوں گا. پھر فرمایا بابا کیا علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. فرمایا کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں فاطمہ تم بھی نہ ہوگی, حسن بھی نہ ہوں گے, حسین تنہا رہ جائیں گے. کوئی نہیں تھا پنجتن میں شہادت کے بعد. جناب سیدہ نے اگلا سوال کیا, بابا پھر میرے بچے کو کون روئے گا, کون گریا کرے گا اس حسین کی مصیبت پر جو بھوکا پیاسا غریب دیار غیر میں شہید کیا جائے گا. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو تمہارے بیٹے پر ہمیشہ روتی رہے گی. خدا کا شکر بجا لائیں کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں سے قرار دیا جسے توفیق نصیب ہوئی حسین پر رونے کی. بس ادا دارو امام علی مقام مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں. بی بی ام سلمہ جو بچپن سے حسین کو پال رہی ہے راوی ہے کہ جب ام سلمہ نے کہا حسین رک جاؤ, امام حسین نے انہیں بھی ایک ایک مقام کو دکھایا, کہا دیکھیے نانی یہاں پر میرا علی اکبر شہید ہوگا. نانی کربلا کی وہ زمین ہے جہاں پر قاسم گریں گے, یہ وہ مقام ہے جہاں اصغر شہید ہوں گے, یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے بازو کٹیں گے. نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا نواسا گھوڑے سے زمین پر آئے گا. روایت کہتی ہے بی بی ام سلمہ نے جب یہ منظر دیکھا, بوڑھی ہو چکی تھی, عصا کا سہارا لے کر چلتی تھی, زمین کے اوپر بے ہوش ہو کر گر گئی. اور جب غصے سے میدار ہوئی کہا حسین جا. روایت میں ایک مٹی کی شیشی رسول اللہ نے 50 سال پہلے جناب ام سلمہ کو دی تھی اور یہ خبر دی تھی ام سلمہ جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی, اس مٹی میں سے خون ابلے گا. اور تاریخ کہتی ہے جناب جبرائیل امین بھی اس وقت جب مولا مدینے سے روانہ ہو رہے تھے کربلا کی مٹی کو لے کر آئے تھے اور امام علی مقام کو دیا تھا, جناب ام سلمہ کو امام حسین نے اس مٹی میں سے کچھ مٹی دی. جناب ام سلمہ نے دونوں خاک کو ملا لیا اور جب مولا چلے گئے تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے دن گزرتے گئے نانی کا دل بے قرار ہوتا رہا, مسترہ میں بے چین ہوتی رہی. جب محرم کا چاند نمودار ہوا, آپ سب گواہ ہوں گے جس کے دل میں عشق حسین ہے, جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ایک غم دل میں پیدا ہوتا ہے. رسول نے کہا ایک ایسی حرارت ہے پتلے حسین کی جو مومنین کے دلوں میں ایسی گرمی اور حدت پیدا ہوتی ہے کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. بی بی ام سلمہ محرم کی تاریخیں گزار رہی ہے, یوم عاشور آ گیا, جب ظہر کا وقت آیا منادی نے ندا دی علی قتل الحسین بکربلا علی ذبح الحسین بکربلا. بی بی ام سلمہ کی آنکھ لگی, کیا دیکھا رسول اللہ خواب میں آئے سر پریشان ہے, سر پر ابا نہیں ہے. جو بھی عربوں کی روایت کو جانتا ہے وہ جانتا ہے جب غم ہوتا ہے تو اپنا ماما اتار دیتے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, آستینیں چڑی ہوئی ہیں, لباس خاک و خون آلودہ ہے. گھبرا کر سوال کیا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان و مضطرب, آپ اتنے بے حال غمگین. رسول اللہ نے کہا ام سلمہ 72 کے لاشیں اٹھا کر آ رہا ہوں, حسین کا لاشا اٹھایا ہے کربلا سے آ رہا ہوں, میرا حسین بھوکا پیاسا شہید ہو گیا. عزاداروں پرسان دیجئے جناب سیدہ کو ان کے لال کا, جناب سیدہ کو 72 شہداء. يعلم الذين ظلموا أياما قلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। परवरदिगार हमारी इस खलील इबादत को कबूल फरमा ले। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने मोमिनीन मोमिनात इल्तमास से दुआ कहते हैं उसकी जायज़ हाजात को मकबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता देकर सलाम सवाल करते हैं जनाब सैयदा का, जिनके वसीले से हर दुआ मकबूल होती है। बीबी के वसीले से जो दुआ मांगी जाए खुसूसन दुनियावी उमूर के लिए कहा गया है कि अगर किसी की दुनिया में तंगी हो, जो मोमिन मोमिनात रस की तंगी रखते हैं, परवरदिगार उनके रस में वसत अता फरमा। बारे लहा जो मरीज़ हैं आमीन कहिए दुआ की कबूलियत के लिए मौसर है। खुदाया जो मोमिन मोमिनात बीमार हैं तुम्हारा से दुआ कहते हैं उन्हें शिफाए कामिल आजल इनायत फरमा। कुल मोमिन मोमिनात को जो हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं बैतुल्लाह मदीना मुनव्वरा नजफ अशरफ करबला मौला शाम ईरान की ज़ियारत मुशर्रफ फरमा। खुदावंदा बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। आज भी और जब इमाम तशरीफ़ लाए उस वक्त हमें उन्हें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।